हाँ जी, तो खुदावंद आपका बरकत दे। तो पहली रिकॉर्डिंग में हमने देख लिया ना जी कि किस तरीके से दुआ करनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये एग्जांपल देखें, हमारे अपने बोलों में कोई ताकत नहीं है। अब जिस तरह एक कोर्ट का आप नज़ारा देख लें कि वहाँ एक मुजरम पेश होता है और उसका वकील साथ होता है ना, तो अगर वो वकील, वो जो सामने बैठा होता है या बैठी होती है, जिसके पास एक हैमर होता है लकड़ी का, है ना, ठीक है, तो वो अगर वो मुजरम का वकील कहे कि मी लॉर्ड, ये बड़ा गरीब बंदा है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो जज है ना, उसकी कलम हरकत में नहीं आएगी, क्योंकि वकील, लॉयर के अपने अल्फाज में कोई ताकत नहीं है। जब वो कहेगा मी लॉर्ड, कानून की किताब फलानी फलानी पैरा सो एंड सो में ये लिखा है मेरे मुवक्किल के लिए, तो उस वक्त वो कानून की रेफरेंस सुन के उसका कलम जो है वो हरकत में आ गया। इसी तरीके से हम खुदा के साथ करते हैं। ओके, हमारे अपने अल्फाज में कोई ताकत नहीं है, ताकत है तो उसके कलाम में है और यीशु नाम में। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुआ जो है हम किस लिए कर रहे हैं, है ना, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वॉर में भी इस्तेमाल होती है ये। इसको क्या करना है कि किसी काम के लिए अगर हमने खुदा से पूछना है तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें। अब यहाँ तक तो हमें एक बेसिक या एक पंजाबी कहते हैं मुडला, मुझे अब पंजाबी भी आ जाए, मुडला असूल। तो अब क्या चाह रहे हैं कि हम क्या करें। फ़र्ज़ किया, एक एग्जांपल है कि इसकी एग्जांपल दे के तो इसको क्लोज करते हैं, जिस तरीके से अगर हम किसी चीज़ के मोहताज हैं या हमें पैसों की ज़रूरत है, कुछ है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सीधा ही कहें खुदा मैं गरीब हूँ, मुझे ये दे दे वो दे दे, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल साम 34 और उसकी 10 वर्स में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम पता क्या करेंगे, हमें बहुत ज़रूरतमंद हैं, है ना, तो फिर हम चलें, हम ऐसे करते हैं, पाकरू खुदावंद हमें बताता है, तो फिर हम कहते हैं चलो ज़बूर साम्स 34 की 10 वर्स में कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। सो हम क्या करेंगे, खुदावंद वो तो बब्बर के बच्चे हैं, मैं तो तेरा बेटा हूँ, तो ये मेरा प्रॉब्लम है और तूने यहाँ लिखा है, तो जब हम इस पे मेडिटेट करेंगे, अपनी फैमिली और अपना प्रॉब्लम लाएंगे, तो हमारा ईमान बढ़ेगा। ओके, और जब हमारा ईमान बढ़ेगा और हम उसको कहेंगे खुदावंद ठीक है, बाज़ का हमें रेफरेंसेस इस तरह वर्सेस नहीं याद होती, लेकिन इतना तो पता होता है खुदावंद देख हम तेरे बच्चे हैं, हैं, तूने अपने कलाम में लिखा है बब्बर का बच्चा, वो जो जंगल के बब्बर जो जंगल का बादशाह है, उसके बच्चे ना तो हाजतमंद होंगे ना भूखे होंगे, हैं, पर खुदावंद यहाँ तूने लिखा है कि मैं तेरा तालुब हूँ, मैं किसी नेमत से मुताज नहीं होऊंगा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये मेरी प्रॉब्लम है, तू हल कर। तो इस तरीके से कलाम के रेफरेंसेस दे के देखें, प्रॉमिसेस जैसे हमने कहा कि 35,000 है, हम प्रॉमिसेस पे जाते हैं, हर प्रॉमिस के साथ एक प्रिंसिपल है बेटा, उस प्रिंसिपल पे हम खड़े हो जाएं, प्रॉमिस को छोड़ें, जब उस पे खड़े हो जाएंगे तो वो जो प्रॉमिस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो अब फिर हम कहते हैं साम्स 127 और उसकी वर्स लिखी हुई है ना कि खुदावंद तू तो अपने महबूब को नींद में देता है। तो इस तरीके से कलाम, अभी दुआ नहीं करनी इससे पहले कि हम अपने प्रॉब्लम के मुताबिक कलाम में से उसको क्लेम करें, नाम लें, खुदावंद ये तूने मेरे लिए कहा है, हैं, फिर हमारा फेथ रेज होगा, फिर हम जब दुआ करेंगे और यीशु के नाम से दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ हमें यीशु के नाम से और बाप से करनी होती है ना, और पाक रूह की रहनुमाई में करनी होती है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 में लिखा है, रोमियो 8 की 26, हमें तो दुआ करनी नहीं आती, लेकिन पाक रूह हमारी रूह के साथ मिल के आए भर भर के दुआ करता है। तो बेसिकली ये दुआ इसमें की जाती है। फिर एक और बात है कि अब ये टॉपिक इतना वास्ट है, मैं क्या करूँ। देखें, जब हम परेशान होते हैं ना, तो अक्सर दुआएं हम सोल से करते हैं, दिमाग से। हमारी सोल में तीन हिस्से हैं, हमारा दिमाग, हमारी आज़ाद मर्जी और इमोशंस। तो जब हम इस प्रॉब्लम में होते हैं, तो फिर हमें एक और लैंग्वेज दी गई है जिसको टंग्स कहते हैं। उसमें फिर जहन का काम नहीं रहता, फिर पाक रूह हमारी रूह के साथ टू दी पॉइंट जाके खुदा से बात करती है। अब ये तो एक पिछली लेसन का था एग्जांपल्स। अब बेसिकली देखिए, अब अगर हमने इंटरसेशन करनी है, शफायती दुआ करनी है, ठीक है, तो ये शफायती दुआ के लिए भी जिस तरह साम्स 119 जबूर की 136 आयत देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये वो दुआ होती है कि पाक रूह जिनके पास इंटरसेसरी मिनिस्ट्री होती है वो दुआ में रोते हैं, है ना। तो लोग कहते हैं यार ये क्या, ये रोते रहते हैं। असल में वो अपने लिए नहीं रोते, वो दूसरों के लिए रोते हैं कि खुदावंद ये तेरे कलाम को नहीं जानते, वो शफायत कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो जबूर 119 की 136 आयत देखें, फिर हम इसको देखेंगे कि कितनी टाइप ऑफ प्रेयर्स हैं और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना होता। और उसकी 119 की 136 आयत देखें क्या लिखा है। सो जब दुआ में लोग रोते हैं या आपके भी आंसू निकलते हैं, तो ये एक शफायती दुआ होती है ना।
मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं।
क्यों जारी?
इसलिए कि लोग मेरी शरीयत को नहीं मानते।
मतलब मैं अपने लिए नहीं रो रहे हैं, मैं उनके लिए रो रहा हूँ जो तेरी। फिर जरमाया चैप्टर 9 वर्स 1 देखें क्या लिखा हुआ है। सो इसलिए थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ही हो रहा है, है ना, थोड़ा सा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जरमाया 9:1,
हाँ जी।
काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा।
अब बेटा
ताकि मैं अपनी बिनती कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता।
मतलब ये हो गया कि अब जब हमने अपना एक मसला है, एक कॉन्ग्रीगेशनल है, तो इसमें हमें देखना है कि किस तरह पाक रूह हमारी रहनमाई करता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री, प्रेयर की जो मिनिस्ट्री है, ये नहीं है मुझे ये दे, हमारी ये ज़रूरत है ये दे, ये जो है ये बड़ा बेसिक लेवल कहलाता है। अब दुआ की मिनिस्ट्री जो है उसको कहते हैं परफेक्टिक मिनिस्ट्री, जिसमें हम खुदा के हजूर जाते हैं और उससे कहते हैं बता मैंने क्या करना है। ठीक है, ये कोई नई ये नई क्या कहते हैं कोई नई बात नहीं है। ये इसमें शुरू से खुदा का एक असूल रहा है, इसको हम कहते हैं परफेक्टिक प्रेयर, नबूती दुआएं। क्योंकि देखें ये जबूर 115 और उसकी 16 आयत में क्या लिखा हुआ है। अब ये हम पता क्या, जितनी देर तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, हम उसके हेवनली कोर्ट्स में नहीं पहुंच सकते, सीधी बात है।
ठीक है, तो लिखा है आसमान तो खुदा उनका आसमान है, लेकिन जमीन उसके नबी उसने बनी आदम को दे दी।
इसका मतलब है कि जमीन जो है ये लीज पे इंसानों को दी गई है। اب لیز سمجھتے ہیں نا آپ لیز پہ، ٹھیک ہے، اب خداون دیکھیں، اب خدا کے اصول ہیں، خدا کبھی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا۔ اب اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اسی دھرتی پہ عظیم بیٹے کو، ہماری بیٹی پرسلا کو پاک روح کے وسیلہ سے وہ کچھ کہتا ہے، اور جب وہ اس بات کے لیے اوبیڈینس میں دعا کرتے ہیں تو پھر اسپرٹ ریلم میں وہ راستہ بنتا ہے جس کے وسیلہ سے خدا اپنا پلان یا مشن پورا کر سکے۔ اب بات کیا ہو رہی ہے، خدا کا دیکھیں پورا ایک طریقہ، ایمس یا آموس 3:7 تو پڑھیں،
آموس
جی، ایمس 3:7 میں، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا، جی سوری، اور 7 verse ہے۔ اب خدا کا ایک طریقہ ہے جی، بڑے اصول سے،
یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکار نہ کرے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈائریکٹ انوالومنٹ کر دے، نو 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 نو، پہلے وہ اپنے نبیوں کو، آئی یو آر آلسو پروفٹ، پروفٹس ہماری بیٹی ہے، یہ بھی الگ سبجیکٹ ہے، سب جو یسو کے خون خریدے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے اور یسو کو شخصی طور پہ قبول کی ہے، یہ جو ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اب دیکھیں نا، اب سدوم اور امورا کو اس نے تباہ کروانا تھا، کرنا تھا، تو جینسز چیپٹر 18:17 میں کچھ کہہ رہا ہے، پیدائش کہہ رہا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں سدوم اور امورا میں کرنے کو جا رہا ہوں اپنے بندہ ابراہم سے نہ پوچھ، ٹھیک ہے۔ سو اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا بیٹا
جی، انکل جی،
پرسیلا بھی ساتھ ہی ہے
جی، انکل
جی بیٹی، تو یہ ابھی ہم آؤٹ لائنز اس لیے کہ بیٹا جی، یہ بعض کا یہ بڑا ٹاپک ہے، میں آپ کو نا ایک کام کروں گا کہ اس کی ٹیچنگز میں آپ کو آج ہی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیوں ہمارے دعا کیا ہے، ہم نے کیسے کرنی ہے یہ، اور کس کے نام سے پرنسپلز کیا ہیں، تو اور پھر یہ کیوں ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، اس کے متعلق یہ میں آج ہی بھیج دوں گا۔ سو اینی وے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ پرفیکٹک پریئرز جو ہیں، جس کو آپ نبوتی دعائیں کہتے ہیں، یہ جو ہیں، یہ دو طریقے سے، جب ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں، خداوند کو پتہ ہوتا ہے، اور ہم بیٹھتے ہیں، اس وقت ہم یہ کچھ نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں خداوند بتا تو نے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اس کام کے لیے، پھر خدا آپ کو، یہ اسپریچول وار کی بات ہو رہی ہے بیٹا جی، اس میں چرچز میں ریوائول آتی ہیں، ورنہ نہیں، ورنہ تو دعا کر دے رہو، ٹھیک ہے وہ بیسک لیول ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، لیکن یہ اسپریچول وار میں، یہ بڑا اچھا ہے آپ ٹائم نکالا کریں، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اسپریچول وار میں جو کورٹس آف ہیونز ہیں اس میں انٹر ہوتے ہیں، کلام میں بتایا گیا۔ اینی وے، سو یہ دو طریقے سے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فور ٹیلنگ، یعنی مستقبل کے بارے میں خدا کہتا ہے فور ٹیلنگز، یعنی کہ خدا، اور ایک ہوتا ہے فورتھ ٹیلنگ، فورتھ ٹیلنگ اور فورتھ ٹیلنگ، یعنی خدا پھر بتائے گا کہ اس کے لیے میرے بیٹے تو نے پرفیکٹک ایکشن کیا کرنا ہے، یہ ایکشن سے دعا ہوتی ہے، اور دوسری کچھ خدا بول ڈالتا ہے جو آپ نے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں اس فضا میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب ایکشن کے ذریعہ سے خدا جو ہے وہ کچھ کام کراتا ہے۔ اب اس کے پرفیکٹک پریئرز کے پرپزز ہیں، یا مقصد کہہ لیں، ये होता है कि ये चंद लोग होते हैं जिनके पास ये मिनिस्ट्री होती है, यानी खुदा के लोगों को खुदा के काम के लिए ये जो है ना ये तैयार करना, इसका एक मकसद ये होता है। दूसरा ये होता है प्रोफेटिक प्रेयर के वसीला से खुदा के लिए वो रास्ता तैयार करना जिसके वसीला से खुदा अपना मिशन कर सके, वरना वो करता नहीं है। हम कह देते हैं ना यार ये इस दुनिया में अचानक खुदा ने ये काम कर दिया, नो नो नो, उसके पीछे चंद लोग उसने बिठाए होते हैं जो इस मिनिस्ट्री के हैं, जिसके वसीला से चर्चेज में रिवाइवल आती है, जिसके वसीला से जो है बेदारी आती है। अब तीसरी चीज़ के इन प्रेयर्स के प्रेयर्स ये हमारी मदद करती हैं कि हम खुदावंद की ग्लोरी जलाल उसके लोगों पे रवील कर सके, जाहिर कर सके। सो हम जल्दी जल्दी ये देखेंगे, अच्छा हम जल्दी जल्दी ये देखेंगे, देखें मूसा की मिसाल है। अब ये कोई नई नहीं है कोई टीचिंग, देखें खुदा ने मूसा को कहा कि मोजेस अपना रॉड बराए कुलजम की तरफ बढ़ा, ये एग्जोडस 14:21 में लिखा है, खुरूज 14:21 में, ये पढ़ लेना। अब जितने अब उस रॉड में क्या है बेटा, उस रॉड में तो कुछ नहीं है, दिस इज अ परफेक्टिक एक्शन। खुदा अगर वो रॉड नहीं बढ़ाता बहरा कुलजम दो हिस्सों में तकसीम नहीं होता। अब क्यों बस हम सोचते हैं क्यों खुदा अपने आप को लिमिटेड कर देता है, भाई खुदा जिस काम को कराने के लिए जो उसने तरीका ढूंढा है अगर हम उसको नहीं करेंगे वो नहीं होगा। सो सम टाइम्स जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं और बोलना नहीं होता, एक प्रॉब्लम ये है कि हम दुआ करके आमीन करके छोड़ देते हैं और ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बात करके फ़ोन बंद कर दूं, हम खुदा के साथ वेट करना है फिर उसकी आवाज़ को देखना है क्या कह रहे हैं। तो ये इसमें तो हम बैठ ही जाते हैं, खुदावंद मैं हाजिर हूँ, तुझे पता है कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, वेट। फिर वो कहेगा मेरे बेटे इस काम के लिए तू ये एक्शन कर, जैसे मैंने एक्सोडस या खुरूज 14:21 में उसको कहा था, किसको, मोजिस को। फिर एक जगह ऐसे होता है कि अमालिकी होती है ना कौम, उनकी बनी इसराइल से जंग हो रही होती है और ये जंग बड़ी तगड़ी होती है, तो खुदा ने मूसा से कहा मूसा जितनी देर तक तेरे हाथ उठे रहेंगे तेरी कौम जीतेगी, जितने जब तेरे हाथ नीचे आएंगे। भाई इन हाथों में क्या है, बात ओबीडियंस की है। तो अब होता क्या था कि अब ये है एक्सोडस 17:11 में, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद आप बाद में देख लेना। अब ऐसा हो गया बेटा कि हाथ नीचे आते थे वो कौम, अब हाथों में क्या है, सब परफेक्टिक, उन्होंने फिर नीचे टेके दे दी, सपोर्ट दे दी, तो फिर जाके हैं। अब इसी तरह सेकंड किंग्स चैप्टर 13:14-19 दूसरी सलातीन 13:14-19 में युआस बादशाह, इसराइल का युआस बादशाह गया, ठीक है, वो कहने लगा कि अरामी जो कौम है आए मेरे बाप एलिशा के पास गया। अब एलिशा ऊपरली मंजिल पे था, अब ये दुआ हो रही है, वो गया कि मुझे ऑयल लगाएगा और मुझे बरकत देगा और दुआ करेगा। जूं ही ये युआस बादशाह एलिशा के पास पहुंचता है तो कहता है कि क्योंकि खुदा ने नबी रखे होते थे ना जिनसे वो गाइडेंस लेते थे, तो कहने लगा एलिशा कहने लगा आए मेरे बाप देख अरामी आ गए हैं हम पे हमला करने के लिए, क्या करना है। उसने कहा ऐसे कर ईस्ट साइड की खिड़की खोल दे, ईस्ट साइड की खिड़की खोल दी। उसने कहा ये तीर कमान में तीर भर और उसने अपने हाथ इस पे रखे, दुआ हो रही है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थ्रू एक्शन है बेटे। सम टाइम्स कोई नहीं वो जो हमारा पैटर्न्स वैटर्न्स है, ये पुराने दौर की बात हो रही है जो आज भी चल रही है, आगे मैं बताऊँगा। अब ये रेवोल्यूशन नहीं है तो बेटा फिर शैतान बड़ा खुश होता है, हम थक भी जाते हैं रोज़े रख के दुआ। अब जब उसने उसने कहा तीर को छोड़, उसने छोड़ा, उसने कहा है तुझे फतह होगी। उसके बाद जब आप यह हवाला पढ़ोगे उसने कहा इन तीरों को जो बाकी वो तीर बॉक्स में थे, उन्होंने कहा इसको जमीन पे मार। उसने तीन दफा मार के छोड़ दिया। तो कहता ओए ये तूने क्या किया। हाला उसने अलीशा ने नहीं था बताया कितनी दफा मार। तो कहता है अब तुझे तीन दफा तुझे चाहिए था पांच छह दफा करता ताकि तुझे फॉर एवर ही होती। तो बात क्या है, बाज का था हम किसी रिक्वेस्ट के लिए तीन दिन हैं, तीन घंटे, तीन महीने, तीन साल दुआ करते हैं। हम वही गलती कर रहे हैं जो युवास बादशाह ने की थी। हमें करना ही चाहिए था। और एक टाइम आता है खुदा कहता है बस कर मेरे बेटे, अब सब्र का प्याला लबरेज हो गया है। बात समझ रहे हैं आप। सो मैं इसको शॉर्ट लेके जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये अब ये एक्शंस में हो रही है मेरे बेटे दुआएं। इसमें तो कोई उन्होंने कहा तेल लगाया चल भाई दुआ करें, थ्रू एक्शन। समटाइम्स जब आप दुआ करेंगे उसमें खुदा कहेगा एक्शन करना, ठीक है। ये दुआएं जो है ना ये इस तरीके से होती हैं, वो अपना इस तरीके से होती हैं। तो ये एक एक्शन है जिसमें खुदा बताता है कि आपने इस रेवोल्यूशन में दुआ करनी है। ओके तो अब क्या हुआ, नया अहदनामा में भी आया ये काम चला कि नहीं चला। हाँ जॉन चैप्टर 9:6-7 में, यूना की इंजील 9:6-7 में एक शख्स जन्म का अंधा आ गया जी, यीशु को आ गया। उसने मट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा के कहा जा शिलोक के हौज में अपनी आंखें धोए। अब मुझे बताएं कि अगर वो अंधा शिलोक के हौज में ना जाता उसने अच्छा नहीं था होना, ठीक है बेटा है। अब वो जो नमान कोड़ी था आपको याद है, अलीशा ने अलीशा के पास आया, उसने कहा दुआ करेगा ये करेगा, उसने उसको कहा जा उधर सात गोते ले, एक गोता वो फिर वो कहने लगा ये क्या। फिर वो उन्होंने समझाया वो जो कह रहे हैं कर दे। उसने एक गोता लगाया, दो लगाए, कुछ नहीं, तीन चार पांच छः सातवें में उसका कोड चला गया, ठीक है। इसी तरीके से नए अहदनामा में भी ये बेटा ये वो कलाम की बातें हैं, ये कोई नए रेवोल्यूशन नहीं है। लोग कहते हो मैनू रेवोल्यूशन वही है जो कलाम में पहले ही लिखा है। हाँ मैं वही करते रहते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाओ जी, मैनू रेवोल्यूशन क्या रेवोल्यूशन, ये तो कलाम की बात है। अब देखें अब मौजूदा दौर में कलीसिया के दौर में भी आ जाए, मरकज 16:17-18 में क्या लिखा है, ओ यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है हैं क्या करेगा, वो तरह तरह की जुबानें बोलेंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। अच्छा आज हम क्या कर रहे हैं, खुदावंद मदद कर ये बदरुए निकल जाए। एक बात याद रखना कि बाइबल के गॉड ट्रायून गॉड ने जिस चीज़ का इख्तियार बिलीवर्स को दे दिया उसने उनके लिए कुछ नहीं करना बाबा, कुछ नहीं करना। ये तो यही हो गया ना जी, अब हमारी बेटी कहीं ऐसी पोस्ट पे है कि इसके असिस्टेंट हैं कोई, तो वो ये काम दे के जाती है तो वापस आती है तो वो आगे से वो कहती है कि जी मैं तो वेट कर रही थी कि आप ही कर दें हैं। तो फिर हम खुदा के साथ खुदाओं दे बदरुआ दे केस है चंगा इनू कर दे। देखें ये बड़ी 5 प्रूफ्स हैं कि खुदा कभी कुछ नहीं करेगा। तो इसी वजह से वो कहता है, फिर जब वो कहता है यीशु कहता है बीमारों पे हाथ रखो, एक्चुअली हम जब परफेक्टिक एक्शन करेंगे हमारे हाथों पे यीशु के हाथ आएंगे और वो यीशु के नाम से वो बंदा ठीक हो जाएगा। अब ये तो हो गए परफेक्टिक एक्शन ऑर्डर। और जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ, कबाजुकात खुदा कहता है मेरे बेटे इस बात के लिए ऊंची आवाज में डिक्लरेशन कर, डिक्लेयर कर। देखें अब ये बड़ा ज़बरदस्त जरमाया 6:18-19 में ये मैं खोल लिया है तो ये मैं पढ़ देता हूँ। जरमिया 6:18-19 में, इसलिए ए कोमो सुनो और आए एल ए मजमा मालूम करो कि उनकी क्या हालत है। अब ना तो कोमो ने सुना ना उस मजमे ने सुना हैं, और यहाँ जो बात कर रही है बात हो रही है कि ये आपने सिर्फ डिक्लेयर करना है। तो जब ये यर्मिया नबी ये बोल बोल रहा था खुदा के कहने पे, तो ना तो कौमों ने सुना, ना तो पूरी ज़मीन तक उसकी आवाज़ पहुंची, हैं, ना कौमों तक उसकी आवाज़ पहुंची। बस ये एक नबूती डिक्लेरेशन है। देखें, नबी के मुंह में जब खुदा का कलाम होता है ना, उसमें पावर होती है, याद रखना, कुवत होती है। अब ये एक और वर्स आप पढ़ दे, होशिया 6:4-5। अब यहां देखें, अब यहां आप देखेंगे वो कह रहा है नबियों के वसीला से मैंने उनको काट डाला और अपने कलाम से उनको कत्ल किया। ये क्या बात है? देखें, ये पढ़ दें आप प्लीज।
इब्राहिम, मैं तुझसे क्या करूं, ऐ यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं, क्योंकि तुम्हारी नेकी सुबह के बादल और शबनम की मानित जल जाती रहती है। इसलिए मैंने उनको नबियों के वसीला से काट डाला और अपने कलाम से कत्ल किया है, और मेरा दिल नूर की मानित चमकता है।
देखें, अब खुदावंद का कलाम, जब देखें, अब कलाम कत्ल करता है और नबियों के वसीला से काट डाला। अब हम जो समझ रहे हैं, वैसे एक बात बता दूं कि यर्मिया जो है वो 48:10 में लिखा हुआ है, बड़ा एक वार्निंग सी दी गई है। सो बेटा, इसको मैं ख़त्म कर लूँ, वो वर्ष बाद में पढ़ना, कि अब खुदावंद का कलाम जब आपके मुंह से निकलता है ना, तो वो जादूगरों के इल्म को काट डालता है, वो अबलीसी कुवतों के असरों को भी काट डालता है, वो दुश्मनों के मंसूबों को काट डालता है, वो मुखालफों को मार डालता है, क्योंकि ये कलाम जो है इसमें ताकत है। सो ये बेटा बात है कि जब खुदावंद कोई कहता है ना, जब उसके वर्ड आपके मुंह में आते हैं ना, वो उसके वर्ड हैं, आपके नहीं हैं। तो ये डिक्लरेशन है, ठीक है। सो ये एक दूसरा रुख है जिसमें चर्चेज में रिवाइवल आती हैं, बताते हैं। जॉय डॉसन जो है, वो उसकी बुक पढ़ना आप लोग, जॉय डॉसन, मैं तो पढ़ी नहीं है, मैं सुन सुना के बता देता हूँ। वो इंटरसेसरी मिनिस्ट्री कह लें, उसमें पहले 10 में आती है, उसका बेटा भी जॉन है, तो जॉय डॉसन। अच्छा, वो प्रोफेटिक तरीके से ऐसे होते हैं कि ये कोरिया का कौन सा पास्टर था, वो योंगेचो, उसका एक पास्टर गया, जो जहाँ भी वो जाता था रिवाइवल आती थी बेटी, और रिवाइवल आती थी, तो उसने 3 दिन का सेमिनार रखा, तो एक चर्च में गया, तो कुछ पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, बंदा बड़ा परेशान, धुआंधार उसने मैसेजेस तैयार किए, सारा कुछ किया, आखिरी दिन रह गया, उसने कहा खुदावंद की हो रहा है, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। तो कह रहा है मैं स्टेज पे बैठा बड़ा बुझे दिल से कि यार मैंने तो अपना जोर लगा दिया, तो बैठा, तो वो अचानक अभी उसने अभी ऑफरिंग होने लगी थी, तो ऑफरिंग से पहले, क्योंकि वो ऑर्डर होता है ना, तो वो जब वो पास्टर उठ के ऑफरिंग के लिए कहने लगा, तो वो एकदम पाखरू ने कहा इसको कह कि आज ऑफरिंग में लेडीज़ जो हैं वो तो ऑफरिंग डालेंगी, और जो मेन हैं वो अपनी रिस्ट वॉचेस डालेंगे। वो पादरी ने कहा क्यों मरवाने लगा यार, ये क्या तू कर रहा है, मतलब है ये कोई बात है, बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, मुझे खुदावंद ने कहा है। आज उसने कहा मैं तुझे ही बुला लूँगा, तू ये अनाउंसमेंट करी क्यों मेरी कलीसिया पजान डे है ना। तो अच्छा, तो तो उठ गया, उसने कहा भाई आज जो ऑफरिंग होगी, तो वो लेडीज़ जो है वो ऑफर जो भी करेंसी में है वो डालेंगी, लेकिन मैन जो है वो अपनी घड़ियां डालेंगे। एक शोर मच गया। उन्होंने पादरी ने इशारा किया ठीक है, और खुदा ने उसे कहा था जब ये बैस्केट तेरे पास आएगी और तू अपनी वॉच को इसमें डालेगा, टच करेंगे, वहाँ रिवाइवल आ जाएगी। अच्छा, वो जनाब जब आई, उसने अपनी डालता ही गया, एकदम रोना शोना शुरू हो गया, लोगों ने तौबा करनी शुरू कर दी, उस चर्च में रिवाइवल आ गई। एक औरत, ایک لاسٹ ایگزامپل، ایک عورت، اس کو اس کا چرچ جو تھا وہ بڑا ہی ڈرائی تھا، لیکن اس کے اندر خداوند کا کام ہو گیا تھا، وہ چاہتی تھی میرے چرچ میں ریوائول آئے، تو دعا کر رہی تھی، خدا نے اس کو بتایا گل سن تو اس طرح کر کے جو چرچ کا مین گیٹ نہیں ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں نہ اوندے منہ لیٹ جا۔ وہ کہنے لگی خداوند میں بڈھی عورت تو لوگ ہنسیں گے، یہ کیا کریں، یہ کیا طریقہ ہے، یہ نان سینس بڑا سا۔ تو اس نے نہیں کیا۔ پانچ سال کے بعد پھر خداوند نے کہا تو ایکشن کر۔ اس نے کہا چلو میں کرتی ہوں، لیٹ گئی، لوگ آس رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ وہ، سروس شروع ہو گئی، پاسٹر اٹھا، اب وہ وہیں ہیں، پاسٹر اٹھا، کہنے لگا ان لوگوں میں تو اڈلٹری میں زندگی بسر کر رہے ہوں، ان لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، ریوائول آ گئی، ساروں نے معافی مانگی۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ وہ ریولیشنز ہیں، بعض اوقات خدا کہتا ہے چل ایسے کر، تو فلانے ٹائم اس چرچ کا چکر لگا لے، اپنا دینا ہاتھ اٹھا لے، ایسے کر کے تو کوئی بچہ ہے یا کچھ اس کی پرابلم ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو اس کے تکیے پہ ہاتھ رکھ لے، ہیں، یہ ایکشنز ہیں، سم ٹائمز یو ہیو ٹو ڈو۔ تو یہ بڑی بیوقوفی سی بات لگتی ہے، بعض اوقات خدا، سو یہ وہ پرفیکٹک پریئرز کا ایک رخ ہے۔ تو یہ میں چاہ رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کیا کرنا تھا، یہ کچھ خدا نے بلوا دیا ہے۔ تو
نہیں انکل، یہ بالکل خدا نے آپ سے صحیح چیز بلوائی ہے، اور میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ خداون نے، اب ہمارا جو یہاں پہ چرچ ہے نا، آپ بے شک ریکارڈنگ انکل جی اب بند کر دیں کیونکہ اوپر بہت لمبی